ईश्वरः त्रस्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन् अपि धियासु च अस्मरन् अस्मरन् तस्य गुणान्। अस्मरन् तस्य गुणान् तस्य वन सेकेंड अंग्रेजी वाला कहा अस्मरन्तस्य गुणान् ताम् ताम् स्तान् नास्क्नो दारो दुमैश्वर नास्क्नो दारो दुमैश्वर। तश्रुत्वा भगवान् रामो रुन्धन्नपि धियासु च अस्मरन्तस्य गुणान् तास्तान् न शक्नो दरुध दिश्वर न शक्नो दरुद्धमीश्वर। तश्रुत्वा भगवान् रामो रुद्धन्नपि धियासु च अस्मरन् अस्मरन्तस्य गुणास्तान् तान् न शक्नोद रुदधूमीश्वर। माता जी तत् यह समाचार श्रुत्वा सुनकर भगवान भगवान रामः रामचंद्र रुंधन प्रयाण करने का प्रयत्न करते अपि यद्यपि धिया बुद्धि से शुचः शोक अस्मरण स्मरण करते हुए तस्या उसके गुणा गुण तान तान विभिन्न परिस्थितियों में न नहीं अशक्नोतः समर्थ रोधधूम रोकने के लिए ईश्वरः परम नियंता होकर भी। अनुवाद तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद की जय। सीता देवी के द्वारा पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चय रूप से दुखी हुए। यद्यपि वे भगवान हैं, किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेम बस अपने शोक को रोक न सके। तात्पर्य, सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोक को भौतिक नहीं मानना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में हमें विरह भाव होते हैं, किंतु ऐसे भावों को आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भाव को आनंदमय माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेमवश्य तस्य स्वभाव का लक्षण माना जाता है, और यह हलादिनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंब होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्वीयै मा पुरो विभो निरमायसे ते यदमुषुपुरुषं भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ठं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय एतदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेन च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्द राधाकान्द नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परीक्षित महाराज को संक्षिप्त में भगवान श्री राम के कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 7 से लेकर के श्लोक संख्या 16 तक। तो 7 में श्लोक कोई तात्पर्य नहीं है। इसके पूर्ववर्ती श्लोकों में हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम अपने जो शरीर पर वस्त्र इत्यादि था। हरि बोल मुरली, तुम लोग कथा सुनो। जो शरीर पर वस्त्र था उस वस्त्र के अलावा सब ब्राह्मणों को दे दिए। लोग राम राज्य को याद करते हैं, राम को जाने या न जाने आज भी लोग कहते हैं कि राम राज आना चाहिए। लोग अपेक्षा करते हैं कि राम राज होना चाहिए, लेकिन जानना चाहिए कि राम राज का मतलब क्या है, राम राज कैसे स्थापित हुआ। राम राज के स्थापना का आधार है वैराग्य, त्याग। त्याग से सब कुछ मिलता है। और जबरदस्ती होल्ड करके रखेंगे तो सब कुछ खो देते हैं। तो इसीलिए सभी व्यक्तियों को त्याग सीखना चाहिए। पूर्ववर्ती श्लोकों में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री राम अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दे दिए, त्याग दिए। और उनके त्याग से ब्राह्मण लोग बड़े खुश हो गए। त्याग से शांति मिलती है। भगवान कहते हैं त्यागात शांतिम अधिगच्छति, दसवें अध्याय में कहते हैं ना, है? बारहवां अध्याय में हाँ कहते हैं कि ज्ञान से योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ है और सबसे अच्छा है कि त्यागात शांतिम अधिगच्छति। शांति प्राप्त करना है तो त्यागना सीखो, आगे बढ़ना है तो पीछे का छोड़ना सीखो। ये प्रकृति का नियम है। जब हम चलते हैं तो एक पैर आगे रखते हैं, दूसरे पैर को उठा लेते हैं, है कि नहीं? दूसरे पैर को वहीं रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं ना। तो त्याग से, उठाने से, भगवान के त्याग से शांति मिलती है। मुझे एक कथा याद आ रही है, मैं कहा भी होती एक बार, एक गुरु और शिष्य का। गुरु हमेशा कहते थे कि बेटा देखो त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, त्याग सबसे बड़ा चीज है, सब कुछ त्याग देना चाहिए। वो शिष्य गुरु में श्रद्धा रखता था लेकिन विश्वास थोड़ा कम था। तो कहा कि गुरु जी सब तो त्याग देना चाहिए लेकिन लक्ष्मी जी को नहीं त्यागना चाहिए, लक्ष्मी जी काम की होती है। गुरु ने कहा कि नहीं, लक्ष्मी को भी त्यागना पड़ेगा, जब शांति चाहिए, सुख चाहिए तो लक्ष्मी को भी त्यागना पड़ेगा। तो ऐसे ही बरसात का समय था, गुरु चला जा रहे थे कहीं, तो एक नदी पार करना था। तो नाविक लोग पैसा पहले मांगते हैं नदी पार करने, नदी पार हो गया तो भाग जाएगा, पैसा नहीं देगा। तो पैसा मांग रहा था नाविक, तो गुरु जी ने कहा कि भाई हम तो बैरागी आदमी हैं, साधु हैं, हम पैसा नहीं रखते हैं। तो कहा तो माँ को उस पार नहीं ले जाएंगे। तो नाविक में और गुरु जी में थोड़ा वार्ता हो रही थी, तो शिष्य को अच्छा नहीं लगा, सोचा कि हमारे गुरु जी हैं और ये इस प्रकार से इंसल्ट कर रहा है। और उस चेले के पास आठ आना पैसा था, दो चवन्नी था, और नाव का जो भाड़ा था वो चार आना एक आदमी का, 25 पैसा नहीं, आठ आना था। तो कहा भाई कितना दाम है बताओ पार करने का? कहा कि चार आना एक चवन्नी। कहा ठीक है, ये पैसा लो, हमारे गुरुजी के बीच का बात अलग है लेकिन तुम कौन होता है बोलने वाला, पैसा लो। पार कर गए नदी को। जब उस पार गए तो चेला बड़ा खुश था। तो गुरु जी से कहा, गुरु जी देखा आप कहते हो त्याग दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ने से क्या होता है, सब कुछ छोड़ो, पैसा वैसा कुछ रखो अपने पास, पैसा नहीं देते तो नाविक कितना फजीहत कर दिया था, पैसा था तो हम नदी पार कर गए। एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, तो गुरुजी मुड़े, कह रहे मूर्ख कहीं का। तो समझा कि गुरु जी हमको डांट रहे, मूर्ख कहीं का, देख तो तेरे पॉकेट में पैसा है। तो कहा नहीं, वो तो दे दिया ना नाविक को। तो गुरुजी ने कहा बेटा जब तुम छोड़ दिया ना तो हम इधर पार होकर के आए, रखा रहा था ना तो वहीं को वहीं रह जाते हम लोग। छोड़ने से, त्यागने से हम पार हुए, पकड़े रहेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो वैसे ही संसार में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। त्यागात शांति अधिगच्छति। वो पीछे जप कौन कर, रामचरण दास हैं क्या उधर राधारंजन, सबसे पीछे उनको बुला लो। तो त्याग से शांति होती है, त्याग से सब कुछ प्राप्त होता है, जो त्यागा है उसे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। लोग विनोबा भावे का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, त्याग से बहुत, भगवान श्री राम सब कुछ त्याग दिए थे, दे दिए थे, और ब्राह्मण लोग बड़े खुश हुए भगवान श्री राम के इस व्यवहार को देख करके। भगवान राम उन लोगों का हृदय जीत लिए, यदि हम किसी का हृदय जीत लेंगे तो उसके लिए कुछ भी मायने रखता है, अपना जान दे देगा उस व्यक्ति के लिए। तो भगवान श्री राम उन लोगों का हृदय जीत लिए सब कुछ दे करके। ते तु ब्राह्मण देवस्य वात्सल्य विच्छसंतुतम प्रीता किं अधिस्तस्मै प्रपदेयम् बवासीरे। वे लोग कहते हैं वात्सल्यं विच्छसंतु संतुतम, भगवान के स्नेह से भगवान के त्याग से वे लोग बड़े प्रसन्न हुए और अत्यंत वात्सल्य पूर्वक भगवान राम के प्रति अनुकूल होकर के वो जो कुछ प्राप्त किए थे भगवान राम से वे सब उनको दे दिए। और ऐसे भी ब्राह्मणों को धन दौलत के क्या काम क्या है, ब्राह्मणों को संतोष, ब्राह्मणों का अलंकार संतोष है न कि धन दौलत। तब ब्राह्मण लोग भगवान श्री राम के स्वभाव को समझ कर करके भगवान श्री राम का गुणगान करते हैं। तो इस सातवां श्लोक है, इस श्लोक में ब्राह्मण लोग कहते हैं नमो ब्रह्मण देवाय रामाय अकुंठमेदसे उत्तम अश्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पिताग्रये। सब लोग श्लोक याद कर लेना है, बोलो नमो ब्रह्मण देवाय रामाय कुंठमेदसे उत्तम अश्लोक धुर्याय न्यस्त दंडां नष्ट दंडा प्रीतांग्रहे। ब्राह्मण लोग भगवान श्री राम को प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं नमो ब्रह्मण देवाय, भगवान ब्राह्मणों के देवता हैं, ब्राह्मणों के द्वारा पूज्य हैं। जो भगवान का पूजा करता है वो ब्राह्मण कहलाता है, जात से नहीं कर्म से। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है भगवान को जानता है वही भगवान का पूजा करेगा। जिसको हम जानते न उसे क्या हालचाल पूछेंगे, न जान न पहचान मैं तेरा मेहमान कहते हैं ना, जिसको जानते हैं नहीं तो क्या पूछेंगे। तो जो जानता है, हो सकता है कि सम्यक रूप से ना थोड़ा ही जानता है, लेकिन जितना जानता है उस रूप में उनका पूजा करता है। और पूजा करने का मतलब सेवा करना, भगवान सेव्य हैं और हम लोग सेवक हैं। सेवक तभी सुखी हो सकता है जब सेव्य का सेवा करे। तो जो भगवान का सेवा करना प्रारंभ कर देता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों के द्वारा आप सेवित हैं। रामाय अकुंठमेदसे, भगवान रामचंद्र कैसे है, अकुंठ, कुंठ मतलब चिंता, कुंठ मतलब चिंता और अकुंठ मतलब उल्टा, या वैकुंठ, दोनों का एक ही अर्थ है, वैकुंठ या अकुंठ दोनों एक ही अर्थ लगते हैं। जिसको चिंता से परे होना है उसे वैकुंठपति नारायण का चिंतन करना चाहिए। जिसको चिंता से परे होना है उसे औकुंठपति भगवान श्री राम का चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान राम का यहाँ पर गुणगान किया गया है। पहला तो कि ब्राह्मणों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वे पूज्य हैं, और उनका मेधस यानी स्मृति जो है वो चिंता से परे है। जिसको जितना चिंता रहेगा उसको उतना ही ज्यादा विस्मृति होता जाएगा। जिसको कोई चिंता नहीं है उसे 100% स्मृति बनी रहेगी। तो पूरा कृष्ण कॉन्शसनेस मोमेंट का जो प्रोसेस है, इसका यही चीज है कि हम चिंता से मुक्त हो जाएं। ये चिंता में पड़े रहेंगे तो मरते समय भगवान का स्मृति नहीं होगा। किसका स्मृति होगा? बाल बच्चों का, परिवार का, जिसमें मन लगा हुआ है। तो जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करना, लेकिन चिंता लगी हुई है उन वस्तुओं में जो हमको भगवान से अलग कर दें। तो इसीलिए जब तक से चिंता मुक्त नहीं होंगे तब तक से हमारी स्मृति शुद्ध नहीं होगी, फोकस नहीं होगी। अमित आप लोग समझ सकते हैं, जब जीते हैं तब इतना चिंता लगा रहता है, और जब मरेंगे हम जानते हैं सब छूटने वाला है तो कितना चिंता होगा है? बच्चे लोग संभाल पाएंगे कि नहीं? सब छोड़कर जा रहे हैं लेकिन बच्चे लोग इतना धन कमाए और संभाल पाएंगे नहीं? हमारी पत्नी का देखभाल बेटा करेगा कि नहीं? पत्नी का क्या होगा, इसका क्या होगा? हजार चिंता। तो वैसे चिंता से हम भगवत धाम को नहीं जा सकते हैं। भगवत धाम जाने के लिए होगा अकुंठ मेधसा। जो व्यक्ति अकुंठ मेधसा है वही वैकुंठ वास कर सकता है। जिसका स्मृति कुंठा से परे हो, चिंता से परे हो, भगवान श्री राम वैसे हैं, और भगवान श्री राम के भक्तगण भी वैसे हैं। रामाय अकुंठ मेधसे, बहुत सुंदर शब्द है, भगवान का गुणानुवाद किया गया है। चिंता इस संसार में हम लोगों को होती है क्योंकि हम लोगों का को संसार से कुछ लेना देना है। भगवान और वैष्णवों को संसार से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। शॉर्टकट तरीका है। उसके बाद कहते हैं उत्तम अश्लोक धुर्याय। धुरी, धुरी समझते हैं ना आप लोग? अपभ्रंश भाषा में धुरी किसे कहते हैं? एक्सेल है? बैलगाड़ी देखे हो, पहिया के बीच वाला रड जिसमें होता है ना, जिससे पहिया चलता है, वो धुरी कहलाता है। मैं आप लोगों को बहुत संस्कृत को समझाने का प्रयास करता हूं समझ सके। तो उत्तम अश्लोक धुर्याय, उनका धुरी जो है, जो बैलेंस है, भगवान कैसे हैं? उत्तम श्लोक। धुरी का मतलब, या शरीर में धुरी क्या है? अरे आत्मा शरीर से परे है, शरीर में धुरी क्या है? नाभि नहीं, रीढ़ की हड्डी। किसने बोला? बैकबोन। बैकबोन वो धुरी है, तो यह सर्वश्रेष्ठ है शरीर के लिए। सब कुछ संचालित होता है यहां से, हालांकि ब्रेन तो है लेकिन बैकबोन से, ब्रेन केवल आदेश दे सकता है लेकिन बैकबोन नहीं रहेगा तो हाथ नहीं उठ पाएगा, पैर नहीं चल पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उत्तम श्लोक धुर्याय, जितने भी लोग हैं उनमें से शिरोमणि हैं भगवान श्री राम। उत्तम श्लोक धुर्याय, समस्त श्रेष्ठ लोगों में से, दुर्याय मतलब श्रेष्ठ, समस्त श्रेष्ठ लोगों में से भगवान श्री राम जो हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्तम श्लोक हैं। और न्यस्त दंड अर्पित अंग्रये, न्यस्त न त, न मतलब नहीं, त मतलब उन लोगों को, दंड मतलब दंड अर्पित दिया जाता है, अंग्रये जो भगवान श्री राम का शरण ले लेता है उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं होता है। तो भगवान श्री राम कैसे हैं? वे ऐसे प्रभु हैं जिनके शरण में जाने से किसी प्रकार का दंड नहीं होता है, दुख जमराज जी का भी दाल नहीं गलता है वहां पर। आप लोग जानते हैं ना, जमराज जी जमदूतों को आदेश दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो भाई सब जगह जाना लेकिन हरे कृष्ण वालों के पास मत जाना, भूल करके भी वहां अपना राज नहीं, वहां अपना दाल नहीं गलता है, वहां अपना दाल नहीं गलता है, क्योंकि वे लोग कैसे हैं? न्यस्त दंडार नस्त दंड अर्पित अंग्रये, वे उन लोगों उनका चरण कमल ग्रहण किए हैं जिनको कोई दंड दे ही नहीं सकता है। तो जमराज जी कहते हैं उनके पास जाना, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम अधेय चेतस्न अस्मर्त चरणारविंद, जिनके पास जिह्वा है लेकिन जिह्वा लेकर के भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जो कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं उनके पास जाओ। कहते असती उन दुष्टों को मेरे पास लाओ और मैं अपने गदा से दंड दूंगा जो हरे कृष्ण का जप नहीं करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और चेतस्न स्मर्त चरणारविंदा, जिनका दिल पत्थर का हो गया है, जिनके जिनका मन नहीं लगता है भगवान का स्मरण, उन लोगों को लाओ। कृष्णो नमत यच्छिर एकदापि, जिनका सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है प्रणाम करने के लिए, ऐसे दुष्टों को लाओ लेकिन उनके पास मत जाना जो भगवान के हो गए हैं। तो यही शब्द है न्यस्त दंड अर्पित अंग्रये, भगवान का चरण कमल बड़ा पूज्य है, जो उनका शरण ले लेता है वो जमराज जी के दंड से परे हो जाता है, जमराज जी का दंड नहीं होता है। तो ऐसे भगवान को ब्राह्मण लोग प्रणाम करें, भगवान का गुणानुवाद किए हैं इसमें, भगवान के चार गुणों का वर्णन किया गया है, वैसे भगवान को ये प्रणाम कर रहे हैं जो सेव्य हैं, ब्राह्मण देवाय, वैसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो समस्त प्रकार के चिंताओं से परे हैं, और जो उनके शरण में जाता है वह भी चिंता मुक्त हो जाता है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत महान लोग हैं, बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, लेकिन उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान श्री राम, उत्तम श्लोक उनका कृति जो है उत्तम उत्तम श्लोकों में वर्णित किया गया है, और जिनके शरण में जाने से किसी प्रकार का भय नहीं होता है, दंड के वे भागी नहीं होते हैं जो लोग उनके शरण जाते हैं, वैसे भगवान को हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं, कदाचित्तलोक जिज्ञासो गूढ़ोरात्रायम लक्षितः चरण वाचो श्रृणोद रामो भार्याम उद्देश्य कस्यचित। एक समय की बात है, पहले के राजा लोग छद्म वेश धारण कर करके जाया करते थे प्रजा के बीच में, जानने के लिए कि प्रजा हमारे विषय में क्या सोचती है। आजकल के राजा लोग, प्रधानमंत्री और मंत्री लोग, ये भी छद्म वेश में जाते हैं लेकिन फोन टैपिंग करा करके हैं, वायरलेस का वो बग लगा कर करके ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे विषय में ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन दोनों के जानकारियों में देखो का कितना अंतर है। आजकल के जो मैनेजर लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, राजा लोग हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और टेंपल कमांडर हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि भगत लोग हमारे विषय में क्या कह रहे हैं और भगवान राम क्या व्यवहार किए और हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं सीखना चाहिए। एक एक पन्ने जो हैं, ये मत समझना कि मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं इससे मुक्त हूं, मैं भी इसी में हूं, प्रयास कर रहा हूं मुक्त होने का। तो भगवान श्री राम कदाचित एक बार, कदाचित शब्द का मतलब है कि जब भगवान श्री राम राजा बन गए थे उस समय, रावण को मार लिए थे, 11,000 वर्ष तक भगवान राज्य किए थे, राम राज्य हुआ था, तो उसी बीच में भगवान श्री राम 8,000-9,000 वर्ष किए होंगे राज। उस समय कदाचित एक समय लोक जिज्ञासु, उन्हें जिज्ञासा हुई कि लोग कैसे रहते हैं, क्या जानते हैं, कैसे सोचते हैं इत्यादि, या हमारी प्रजा कैसी है उसको जानने और देखने के लिए। आजकल के प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, मैं कल बनारस आ रहा था या जा भी रहा था तो हाईवे से मंदिर पहुंचने में हार्डली 5 मिनट लगता है, लेकिन लग गया 45 मिनट, क्योंकि रोड इतना खराब है, इतना खराब है। तो मैं सोच रहा था कि मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कभी कभी मोदी जी को मारुति गाड़ी में आना चाहिए, 800 में आना चाहिए इस रोड पर, तब असल में पता लगेगा कि बनारस के लोग कैसे हैं। वो तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, बूम वहाँ उतरे चले गए, उन्हें क्या मालूम है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे अकबर के राज्य में एक व्यक्ति था, उसके पास गाय थी और वो दूध डेली पीता था। अकबर बुलाया, सब लोग कैसे हैं, प्रजा कैसी है? अरे महाराज मत पूछिए, सब लोग गाय का दूध पी रहे हैं। वो गाय का दूध पी रहा था, सब लोग गाय का दूध पी रहे हैं। कुछ दिन के बाद अकबर ने क्या किया, उसके गाय को हंकवा दिया वहां से, गाय को ले लिया, कहा कि राजा को चाहिए। फिर अकबर बुलाए, पूछे कैसे हैं, महाराज मत पूछिए, किसी को दूध नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको मिल रहा है तो सब खुशी हैं और हमको नहीं, सब दुखी हैं, ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टेम्बल कमांडर, मैनेजर, राजा, जितने लोग हैं, इन लोगों का धर्म है देखना कि प्रजा को क्या तकलीफ है। एक भक्त ने कहा कि हमारे इस्कान के भक्त लोग हैं जो लीडर लोग हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर नहीं हैं। समझ रहे कहने का मतलब ना, कि लोकसभा का मेंबर और नहीं तो कम से कम चुने जाते हैं, उनको थोड़ा डर रहता है कुछ करना पड़ेगा भा, नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा, प्रजा के बीच में जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के मेंबर चुन लिए जाते हैं तो प्रजा से कुछ उनका उतना ये नहीं होता है। तो इस्कान के जो लीडर लोग हैं राज्यसभा के मेंबर, चाहिए होना लोकसभा का मेंबर। तो भगवान लोकसभा के मेंबर थे भगवान राम, इसलिए लोक के बीच में गए ब्रह्मचारी आश्रम में देखने के लिए, ब्रह्मचारी लोग कैसे सो रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसा उनका रहन सहन है इत्यादि जानने के लिए। कदाचित लोकान जिज्ञासु, ये जानने के लिए उन्हें जिज्ञासा हुई कि लोग कैसे रहते हैं। गुढ़ो रात्र अमलक्षित, रात के समय एक समय भेष बदल करे, गुढ़ो राजा के भेष में नहीं गए, अब पता नहीं कौन भेष पकड़े थे, लेकिन भेष बदल करके गए, यहां गुढ़ो ही कहते हैं, ऐसे भी शॉर्टकट मार रहे हैं सुखदेव जी, कहते हैं गुढ़ो भेष बदल करके। रात्यम, रात्रि के समय अलक्षितम, अकेले गए। आजकल कहीं जाना हो तो तुरंत खबर पहुंच जाता है, भगवान राम खबर नहीं दिए, अलक्षितम, किसी को मालूम भी नहीं था कि भगवान राम आने वाले हैं या जाने वाले हैं, कोई देखा भी नहीं। रात में सब लोग सोते हैं, दिन में शायद जाते तो कुछ देख लेते, पहचान लेते। तो रात्रि का समय था, अर्धरात्रि के समय भेष बदल कर करके लोगों के दृष्टि से उझल होते हुए भगवान राम विचरण कर रहे थे, चरण विचरण कर रहे थे। चरण बाचो श्रो राम, भगवान राम एक वचन सुने, कहते हैं बाचो बाचो सुनो, वे सुने। जब भी सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, कोई मुंह बंद रहेगा तो सुनेंगे? सुनना कहने से इतना भी कह सकते थे चरण सुनो, जब जा रहे थे तो उन्होंने कुछ सुना, तो यहां पर बाचो सुनो कहा गया है। एक वचन सुने, एक बात सुने, वो क्या बात था? जब कभी संस्कृत भाषा में जब किसी वस्तु पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, उसका महत्व बताना पड़ता है, तो स्पष्ट करना पड़ता है। जैसे दुर्योधन जब गया, जब देखा दृष्टवातु पांडवानिकम व्युढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। देखा वचनम अब्रवीत, और यहां पर क्या वाचो सुना, वचनम अब्रवीत बोला। अरे जब बोलेगा तो वचन ही बोलेगा ना, कोई सा कोई बोलेगा सुनाई पड़ेगा नहीं ना। वचनम अब्रवीत बोला, वचन बोला। तो वचन शब्द जो है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिटिकल टॉक कर रहा था, और क्या कहा, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्युढ़म दुर्योधनस्ता आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। देखिए गुरुजी, आप इसको सिखाए थे ना, ये द्रुपद का बेटा है, वही है ना, आप क्या थे ना, ये सब काम द्रुपद के बेटे के द्वारा दिया गया। द्रुपद कहने की जरूरत क्या था, दृष्टद्युम्न कह सकता था, लेकिन द्रुपद कहा। तो शिष्येण धीमताम, क्लियर कर दिया कि आपका ही चेला था, आपको मालूम था कि आपको ये मारने वाला, फिर भी आप इतने मैग्नेनिमस थे कि इसको शिक्षा दिए। और देखिए कितना अच्छा व्यवस्था किया है आपको मारने के लिए, देख लीजिए। तो वह है वचनम अब्रवीत, पॉलिटिकल डाक। तो यहां पर वाचो सुनो, सुने, क्या सुने, वचन सुने। क्या वचन सुने, बड़ा गुढ़ था। रामो भार्या उदस्य कस्यचित, उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति अपने पत्नी के विषय में, भगवान राम के पत्नी के विषय में कहते भार्या, अपनी पत्नी के भार्याम उदस्य कस्यचित, कोई व्यक्ति उनके पत्नी के विषय में कुछ बात कह रहा था, वो अपने कान से सुने, भगवान राम सुने। आजकल हम लोग सुनते नहीं हैं, हम लोग जो सुना है वो कहता है, वो सुनते हैं और उसी पर झगड़ा कर लेते हैं बिना जाने पहचाने। ये अभी फ्रेश न्यूज है जुहू में। एक बात क्या हुआ कि एक हमारा डिवोटी है, मैनेजर है, वह एक सिक्योरिटी को बुलाया कुछ बात करने के लिए। अब वो सिक्योरिटी को बुलाया तो और सिक्योरिटी थे, कहे कि आज प्रभु जी ने उसको खूब डांटा है, गाली गलौज किया, खूब डांटा। अब किसी प्रकार से बात एक दूसरे भक्त के पास पहुंच गई। वो भक्त मेरे पास आया, कहा कि प्रभु जी ये प्रभु जी ठीक नहीं कर रहे हैं, आखिर वो लोग भी बेचारे काम करने आए हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं सिक्योरिटी से, अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा कि आपने देखा था गाली गलौज कर, आपने सुना था साक्षात? कहा नहीं नहीं, वो दूसरा सिक्योरिटी बोल रहा था। मैं कहा ठीक है, उसको बुलाओ। उससे बुलाया तो मैं पूछा कि तूने देखा वो गाली गलौज कर रहे थे या कुछ मारपीट कर रहे थे? नहीं नहीं प्रभु जी, तो उनको बुलाए थे अपने केबिन में। तब केबिन में बुलाए थे उसने वो देख लिया, उसके बाद और जो था इसका अपना दिया हुआ परपोट था। और यह परपोट इतना खराब हुआ कि मंदिर का वातावरण खराब हो गया। तो हम लोग ऐसे ही मंदिर का वातावरण खराब करते हैं। सत्य कुछ होता है उसमें कुछ दम नहीं है, लेकिन तब तक से फैल गया, वातावरण दूषित हो गया। वो बुलाया क्योंकि आजकल अभी याकूब मेनन का वो फांसी था ना, तो उस समय सिक्योरिटी टाइट हो गई थी, तो ये सिक्योरिटी थोड़ा लेजी है, पढ़ा लिखा नहीं है, भोला बाबा है। तो एक बार सिक्योरिटी पुलिस वाले ड्रिल करने आए थे, तो उनके पास रिवाल्वर था और पेपर में लपेट करके ये चेक कर रहा था, वो रिवाल्वर हाथ में से कर करके वो चला गया पुलिस वाला, ये चेक नहीं किया। अब उसके ऊपर वो पुलिस वाला बाद में हमारे जो डिवोटी है सिक्योरिटी देखता है उसको खूब डांटा कि तुम्हारे सिक्योरिटी को रखा है, मैं रिवाल्वर लेकर चला गया, नाइफ लेकर चला गया, चेक ही नहीं किया। वो बेचारा कहा प्रभु जी मैं पूरा चेक किया। अरे पूरा चेक किया था हाथ में क्यों चेक, वो तो न्यूज पेपर पड़ा हुआ था हाथ में, वो देखा नहीं, ऐसा बोला आदमी था, तो उसको डांट रहा था। अब उसको लेकर के दूसरे सिक्योरिटी बात किए, दूसरे ने तीसरे को बोल दिया, कुछ भी था नहीं, खोदन चले पहाड़ को उसमें निकले चूहिया, कुछ भी नहीं था। लेकिन तिल का ताड़ हम लोग बना देते हैं, ये सब व्यर्थ का बकवास है। भगवान राम अपने कान से सुने, तो कहते हैं राम भार्याद उदिश्य कस्य चित, उनके पत्नी को इंगित करते हुए कोई कह रहा था। अब क्या कह रहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, नहीं तो फिर प्रजल्प सोना हो जाना शुरू होता। सुखदेव गोस्वामी बड़े सतर्क हैं, तो और सब बात नहीं निकले, ये बात जरूर कहे कि धोबिया ने बात क्या कहा था। यदि सुखदेव जी नहीं कहे होते तो कुछ और कहते, कहते धोबिया क्या कह रहा है, ना हम बीरभति त्वाम दुष्टहा असती परवेश्य गामह ऐस्त्रण ही विभृत्या सीता रामो ना हम भजे पुनः। कहते न हम विभर्ती, कहते मैं तुम्हा भर्ती मतलब भरण करना, भरण पोषण करना, इसलिए पति को भतार कहा जाता है। भतार का मतलब भरण पोषण करने वाला, भतार शब्द संस्कृत है, अभरण से संस्कृत का भर्ती। यहां पर विभर्ती मतलब विशेष रूप से भरण पोषण करने वाला, शारीरिक मानसिक सब प्रकार से, आध्यात्मिक सब प्रकार से, वो पति कहते पति परमेश्वर। तो विभर्ती का मतलब जो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हो, कहते ना हम विभर्ती त्वाम दुष्टा असती परवेश्य गामः, अपने पत्नी को गाली दे रहा था अमित अमृतेश प्रभु, सुन लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वो अपने पत्नी को गाली दे रहा था, जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, क्या क्या बोल रहा है, कहते दुष्टा तुम दुष्ट हो, असती तुम सती नहीं है, चेष्ट है नहीं है, और परवेश्य यानी वेश्या है, परवेश्य गाम दूसरों के घर पर जाने वाली, आजकल तो कोठा वाली है, तो वही कोठा वाली बोल रहा है, परवेश्य गाम दूसरों के घर जाने वाली तुम है, इसलिए मैं तुम्हें भरण पोषण नहीं करूंगा। कहते आयस्त्रण आयस्त्रण ही, आयस्त्रण मतलब जो स्त्री के बस में हो, जो पत्नी के बस में हो उसे आयस्त्रण कहते हैं, जो पत्नी का लंपट हो, या क्या कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में राधारंजन, जोरू का गुलाम, जैसे राधारंजन है नहीं, नहीं। जोरू का गुलाम और क्या मेहरा भी होता है, स्त्री भक्त, अच्छा हिंदी समझो, स्त्री भक्त रामचरण जी के लिए अच्छा है, स्त्री भक्त हैं सभी गृहस्थों के लिए, सब जरूर गुलाम हैं, सब स्त्रण हैं,
ही कहते हैं ही, ही मतलब निश्चय ही। अब जो बात कहने जा रहा है बड़ा गड़बड़ कर दिया। स्त्री का गुलाम तक ठीक कहा, सब लोग स्त्री के गुलाम हैं, कोई नहीं कह सकता मैं स्त्री गुलाम है। जो कहे कि मैं स्त्री गुलाम नहीं हूं महामूर्ख है। सब लोग स्त्री के गुलाम हैं। शांति रखना है घर गृहस्थी में तो पत्नी का बन जाओ बस। बाहर पत्नी आपका बनकर रहेगी लेकिन घर में आपको बनना पड़ेगा उसका। तो इस चरण ही कहते हैं विभ्रयात, कहते हैं विभ्रयात सीतारामो। हो सकता है कि स्त्री का गुलाम लंपट राम सीता को स्वीकार कर सकता है जो कि दूसरे के घर में जा करके रही थी। न अहम भजे पुण्य, मैं तुम्हें पुनः स्वीकार नहीं करूंगा, भक्त कर जाओ मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान राम के कान में यह बात जो था सीधे लगा गोली के समान कि बाप रे बाप, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे विषय में। भगवान दूसरे से नहीं सुने थे, साक्षात अकर्ण अपने कान से सुने थे। अब सुखदेव गोस्वामी मानो हरे कृष्ण इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये बहुत गर्हित बात था जो उस व्यक्ति ने कह दिया था, भगवान श्री राम सुने थे। हम लोग स्वयं नहीं सुनना चाहेंगे अपने लोगों के विषय में, अपने मित्रों के विषय में, पत्नी के विषय में अच्छा नहीं लगता है। सुनना तो एक चीज, सुनने के बाद रिएक्शन क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर भगवान और हम में भेद देखा जाता है। भगवान रिएक्ट क्या किए और हम लोग रिएक्ट क्या करेंगे वो आगे श्लोक 10 बता देंगे। इति इति लोकात बहुत मुखात दूर दूर आराध्य संविदः पत्याभीतेन सा त्यक्त्वा।